मैं सुजीत कुमार, बीए थर्ड ईयर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, बीएचयू, कंपेटिटिव पॉलिटिक्स का रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत अध्याय 6, कार्यपालिका, तुलनात्मक विश्लेषण, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और रूसी संघ। सरकार के तीन अंग। सरकार राज्य का आवश्यक तत्व है। यह राज्य का कार्यवाहक यंत्र है जो राज्य की इच्छा को निर्धारित, व्यक्त तथा क्रियान्वित करता है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य का मूर्त रूप है। उसे राज्य की आत्मा कहा जा सकता है। सरकार राज्य का वह यंत्र है जिसके ऊपर राज्य के कानून बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा उनकी व्याख्या करने का दायित्व है। सरकार सामान्यतः तीन प्रकार के कार्य करती है। पहला, कानून बनाना, दूसरा, उन्हें क्रियान्वित करना, और तीसरा, जो व्यक्ति उनका पालन न करे उन्हें दंड देना। इन कार्यों को करने के लिए सरकार के तीन अंग होते हैं। पहला, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव, दूसरा, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा, न्यायपालिका, जुडिशियरी। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें क्रियान्वित करती है, एवं न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है तथा उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। कार्यपालिका के कार्य। राज्य के कार्यों के संबंध में वर्तमान समय में व्यक्तिवादी विचारधारा को त्याग कर जन कल्याणकारी राज्य के विचार को अपना लिया गया है। जन कल्याणकारी राज्य की विचारधारा का स्वाभाविक परिणाम राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है। और जैसा कि लिप्टन लिखते हैं, राज्य के कार्यों में प्रत्येक वृद्धि ने कार्यपालिका के कार्यों और शक्तियों में वृद्धि की है। वर्तमान समय में कार्यपालिका के प्रमुख कार्य निम्नलिखित कहे जा सकते हैं। पहला, आंतरिक शासन संबंधी कार्य। प्रत्येक राज्य राजनीतिक रूप में संगठित समाज, और इस संगठित समाज की सर्वप्रथम आवश्यकता शांति और व्यवस्था बनाए रखना होता है तथा यह कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यापार और यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था और कृषि पर नियंत्रण आदि कार्य भी कार्यपालिका द्वारा ही किए जाते हैं। इन कार्यों के संपादन हेतु कार्यपालिका द्वारा बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्तियां की जाती है तथा इन अधिकारियों के अंतर्गत पदोन्नति, पदावनति तथा पदच्युति का कार्य भी कार्यपालिका ही करती है। पदाधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें निर्देशन देने के कार्य के माध्यम से कार्यपालिका वास्तविक प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। दूसरा, वैदेशिक संबंधों का संचालन। वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति तथा राजनीतिक चेतना ने वैदेशिक संबंधों के संचालन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, और राज्य की ओर से वैदेशिक संबंधों का संचालन कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। अपने इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधि नियुक्त करती है, दूसरे राज्यों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संधियां संपन्न करती हैं और विविध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेती है। यद्यपि वर्तमान समय की प्रवृत्ति के अनुसार सामान्यतया व्यवस्थापिका विदेश नीति पर नियंत्रण रखती है, किंतु वैदेशिक संबंधों के संचालन में विशेषज्ञता, गुप्तता और वैयक्तिक चातुर्य की आवश्यकता होने के कारण व्यवस्थापिका वैदेशिक संबंधों के वास्तविक संचालन में बहुत ही कम भाग ले सकती है। तीसरा, सैनिक कार्य। सामान्यतया राज्य की कार्यपालिका का प्रधान सेना के सभी अंगों, स्थल, जल और वायु के प्रधान रूप में कार्य करता है, और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका आवश्यकता अनुसार युद्ध अथवा शांति की घोषणा कर सकती है। चौथा, विधि निर्माण संबंधी कार्य। कार्यपालिका के विधि निर्माण संबंधी कार्य बहुत कुछ सीमा तक शासन व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में कार्यपालिका को विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का अधिकार होता है। संसदात्मक शासन में तो कार्यपालिका विधि निर्माण के क्षेत्र में व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है, और विशेष परिस्थितियों में लोकप्रिय सदन को भंग करते हुए नव निर्वाचन का आदेश दे सकती है। वर्तमान समय में तो यहाँ तक कहा जा सकता है कि कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका की स्वीकृति से कानूनों का निर्माण करती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में भी कार्यपालिका परोक्ष रूप से विधि निर्माण कार्य को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त जिस समय व्यवस्थापिका अधिवेशन में नहीं होती, उस समय आवश्यकता पड़ने पर कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर सकती है जो विधि के समान ही प्रभावी होते हैं। वर्तमान समय में कार्यपालिका को प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से भी बहुत अधिक शक्ति प्राप्त हो गई है। पांचवा, वित्तीय कार्य। यद्यपि वार्षिक बजट स्वीकृत करने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, किंतु इस बजट का प्रारूप तैयार करने का कार्य कार्यपालिका ही कर सकती है। कार्यपालिका का वित्त विभाग आय के विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त आय के उपयोग पर विचार करता है। छठा, न्याय संबंधी कार्य। प्रायः प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। सभी देशों में कार्यपालिका प्रधान को क्षमादान का अधिकार प्राप्त होता है, जिनके अनुसार कार्यपालिका न्यायपालिका द्वारा दंडित व्यक्तियों पर दया करके उनके दंड को कम कर सकती या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकती है। सर्वक्षमा की शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका एक ही अपराध से संबंधित अनेक अपराधियों को एक साथ क्षमा प्रदान कर सकती है। कार्यपालिका को क्षमादान की यह शक्ति मानवीय आधार तथा राजनीतिक और व्यवहारिक कारणों से प्रदान करी जाती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में कार्यपालिका के सामान्य निरीक्षण के अंतर्गत कार्य करने वाले सरकारी विभागों को अर्धन्यायिक कोटि के व्यापक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। उदाहरणार्थ ब्रिटेन में स्वास्थ्य मंत्रालय अपने प्रशासनिक कार्यों के सिलसिले में लोगों पर जुर्माने कर सकता है, हर्जाना वसूल कर सकता है। सातवां, विविध कार्य। उपायुक्त के अतिरिक्त अनेक देशों में कार्यपालिका को उपाधियां वितरित करने का अधिकार भी होता है। कुछ देशों में विशिष्ट सेवा के बदले पेंशन या अन्य प्रकार से सहायता देने का अधिकार भी कार्यपालिका को होता है। वस्तुतः जनकल्याणकारी राज्य की विचारधारा के कारण कार्यपालिका के कार्यों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि तथा उत्तरदायी तत्व। आधुनिक युग की कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों ने कार्यपालिका की शक्तियों में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि की है। लॉक तथा रूसो ने अपने सामाजिक समझौते में सीमित कार्यपालिका तथा लोकप्रिय कार्यपालिका के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, किंतु यथार्थ में आधुनिक प्रवृत्तियों ने समस्त कार्यपालिका को हॉक्स का यथार्थ अनुयायी बना दिया है। मैक्रीडीस ने ठीक ही कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक तत्वों व प्रवृत्तियों ने राजनीतिक कार्यपालिका को शक्ति का प्रधान केंद्र बना दिया। कार्यपालिका में शक्तियों के केंद्रण के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। पहला, केंद्रीकरण। चाहे संघात्मक शासन हो अथवा एकात्मक शासन, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जोरों पर है। प्रशासन, राजनीतिक दल अथवा सरकार के विभिन्न अंगों को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न ढांचों का संतुलन केंद्रीकरण की ओर झुका हुआ है। अमेरिका और भारत जैसे संघों में केंद्रीय सरकार की शक्तियां निरंतर बढ़ती रही है। राज्यों की स्थिति केंद्रीय सरकार के अभिकर्ता जैसी हो गई है। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का अनिवार्य परिणाम यह रहता है कि उन समस्त अवैध शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका ही करती है जो संविधान के इतर विकसित होती है। दूसरा, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा। आधुनिक युग में दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति समाजवाद तथा लोक कल्याणकारी राज्य का आंदोलन है। प्रत्येक नागरिक यह चाहता है कि राज्य उसके लिए अधिक से अधिक लाभकारी कार्य करे। बेरोजगारी, आर्थिक प्रतिद्वंद्वता तथा उच्च जीवन स्तर का अभाव प्रत्येक देश की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। इन समस्याओं के निराकरण के लिए बड़े बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा आर्थिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय और गृह संकट। वर्तमान युग संकटों का युग है। प्रत्येक देश की समस्याएं पेचीदा और जटिल है। उदाहरण के लिए भारत में बेरोजगारी, अभी अकाल, कभी सूखा, कभी बाढ़ जैसी भयंकर समस्याएं रहती हैं। अमेरिका में काले निग्रो तथा गोरों के सामंजस्य की भयंकर राष्ट्रीय समस्या है। इसी प्रकार चीन वियतनाम युद्ध, पश्चिमी एशिया का संकट, भारत चीन संबंध की जटिलता, खाड़ी युद्ध कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पेचीदा संकट तथा झगड़े हैं जो कभी युद्ध का रूप ले लेते हैं। युद्धों के साथ राष्ट्रीय जय पराजय जुड़ी रहती है। अतः संकट के इस युग में कार्यपालिका के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय लॉर्ड जॉर्ज तथा चर्चिल की शक्तियां हिटलर और मुसोलिनी से कम नहीं थी। आर्थिक संकट के समय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के संवैधानिक अधिनायक ही थे। चौथा, आधुनिक समस्याओं की जटिलता। वर्तमान समय में राज्य को अत्यधिक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं को हल करने के लिए जिस विशेष ज्ञान, योग्यता और अनुभव की आवश्यकता होती है वो कार्यपालिका के सदस्यों के पास ही होते हैं, व्यवस्थापिका के सामान्य योग्यता वाले सदस्यों के पास नहीं। व्यवस्थापिका के सदस्य स्वयं अपनी अक्षमताओं से परिचित होते हैं, इसलिए आमतौर पर वे कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्तियों का स्वागत ही करते हैं। पांचवा, व्यवस्थापन। वर्तमान समय में कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने और इस कार्य के जटिल हो जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी ही इच्छा से कानून निर्माण की शक्ति का एक बड़ा भाग कार्यपालिका के विभिन्न विभागों को सौंप दिया जाता है। व्यवस्थापिका कानून की केवल मोटी रूपरेखा निर्धारित करती है तथा नियम उपनयन तैयार करने का कार्य प्रशासन के संबंधित विभाग को सौंप दिया जाता है। यही प्रदत्त व्यवस्थापन है तथा प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण कार्यपालिका की शक्तियों में बहुत वृद्धि हो गई है। छठा, नेतृत्व की आवश्यकता। राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय गौरव और प्रतिष्ठा का स्रोत होता है। दुर्बल नेतृत्व राष्ट्र को दुर्बल करने के साथ साथ राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का ह्रास करता है। आज प्रत्येक देश की जनता गौरव और प्रतिष्ठा की आकांक्षा रखती है। कार्यपालिका ही राष्ट्र के सबल नेतृत्व प्रदान कर सकती है। सातवां, राजनीतिक दलों का विकास। आज प्रत्येक देश में राजनीतिक दलों का विकास हो चुका है। प्रत्येक देश में कार्यपालिका अपने दल की नेता तथा प्रमुख वक्ता होती है। उसका दल उसकी नीतियों और कार्यों का समर्थन करते हुए उसके पक्ष में लोकमत तैयार करता रहता है। राजनीतिक दलों में कठोर अनुशासन पाया जाता है तथा वे सदैव अपने नेता के नेतृत्व में कार्य करते हैं। दलीय प्रथा की कठोरता ने कार्यपालिका को जहां जन समर्थन प्रदान किया है, वहां अनौपचारिक दृढ़ता भी प्रदान कर दी है। आठवां, व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास। आधुनिक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों ने व्यवस्थापिका के स्वरूप को ही बल दिया है। व्यवस्थापिकाओं के सदस्य न तो समस्याओं की जटिलताओं को समझ पाते हैं और न वे स्वयं कानून बनाते हैं। कानून प्रशासकों के बंद कमरों में बने होते हैं और संसद तो हाँ या न करने वाली संस्था रह गई है। संक्षेप में, सभी देशों में कार्यपालिका ने विधायिका को पीछे ढकेलते हुए अत्यधिक शक्तियां हथिया ली हैं। लिप्सन ने लिखा, राज्य के कार्यों में प्रत्येक वृद्धि ने कार्यपालिका के कार्यों और शक्ति में वृद्धि की है। कार्यपालिका तुलनात्मक विश्लेषण। ब्रिटेन की कार्यपालिका। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। इसके विपरीत राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का ही होता है और उसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती, इसलिए उसे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहते हैं। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली विद्यमान है। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु उनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, जिसे सैद्धांतिक रूप से गौण स्थिति प्राप्त है। इस दृष्टि से ब्रिटेन की कार्यपालिका के अंतर्गत कैबिनेट और प्रधानमंत्री का अध्ययन महत्व रखता है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का महत्व। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है तथा दूसरा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है, किंतु वास्तविक रूप में सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान नहीं वरन वास्तविक प्रधान करता है। ब्रिटेन में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए लवेल ने इसे राजनीतिक मेहराव की आधारशिला कहा है और रैमजे म्योर का कहना है कि कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक चक्र है। सर जॉन मैरियट का कहना है कि कैबिनेट वह धुरी है जिस पर संपूर्ण प्रशासन चक्र घूमता है। यह तथ्य है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट सर्वाधिक शक्तिशाली इकाई है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल का अभिप्राय। मंत्रिमंडल का आशय उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री सिद्धांत सदस्य संसद सदस्यों और व्यवहार में सामान्यतया अपने ही राजनीतिक दल के संसद सदस्यों में से अपने सहयोगियों का चुनाव करते हैं। ब्रिटिश संविधान की भांति ही ब्रिटिश शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख संस्था मंत्रिमंडल भी विकास का ही परिणाम है, निर्माण का नहीं। इसकी स्थापना किसी संसदीय अधिनियम के आधार पर नहीं वरन वही कई पिछली लगभग 3 सदियों के विकास का परिणाम है। यद्यपि मंत्रिमंडल के द्वारा 18वीं सदी से कार्य किया जा रहा है, किंतु कानून में इसके अस्तित्व को 1937 के सम्राट के मंत्रिपरिनियम में ही स्वीकार किया गया है। मंत्रिमंडल का गठन। मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति से प्रारंभ होती है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव सम्राट द्वारा किया जाता है, लेकिन सामान्यतया ब्रिटेन की द्विदल पद्धति के अंतर्गत प्रधानमंत्री का चुनाव महानिर्वाचन में जनता द्वारा ही किया जाता है। सुस्थापित परंपराओं के अनुसार सम्राट लोक सदन के बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है, अथवा सामान्यतया इस संबंध में सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा या विवेक का कोई महत्व नहीं है। रॉबर्ट वालपोल के समय से ही प्रत्येक प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य रहा है और 1923 में जॉर्ज पंचम द्वारा लॉर्ड कर्जन के स्थान पर वाल्डविन को प्रधानमंत्री पद प्रदान करके यह परंपरा स्थापित हो गई है कि प्रधानमंत्री लोक सदन का ही सदस्य होना चाहिए। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। 1937 के सम्राट के मंत्री परिनियम के अनुसार वर्तमान समय में मंत्रिमंडल में 20 पद होते हैं। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री तथा राजकोष का प्रथम लॉर्ड कहा जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कम या अधिक हो सकती है। मंत्रिमंडल के कार्य तथा शक्तियां। मंत्रिमंडल के कार्यों तथा शक्तियों का आधार वैधानिक न होकर परंपरागत है। जहां तक वैधानिक स्थिति का संबंध है, मंत्रिमंडल सम्राट की एक परामर्शदात्री समिति मात्र है, किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि सम्राट की सभी शक्तियां का उपयोग कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में राजा के पद की शक्तियों ज्यों ज्यों कम होती हैं गई मंत्रिमंडल की शक्तियां, वैसे वैसे बढ़ती गई हैं। होल्डन समिति के प्रतिवेदन में मंत्रिमंडल का संपूर्ण शासन तंत्र का मुख्य आधार बताया गया है। रैमजे, म्योर, लॉवेल, एमरी, बेजहॉट और ब्रिटिश संविधान के लेखकों ने शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ऐसी ही गौरवपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन व्यवस्था का हृदय है और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल को जितनी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है उतनी शासन के अन्य किसी भी अंग को नहीं। शासन का आधार बिंदु होने के कारण मंत्रिमंडल के कार्य बहुमुखी हैं। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल को कार्यपालिका क्षेत्र के अतिरिक्त विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख इन रूपों में किया जा सकता है। पहला, कार्यपालिका संबंधी कार्य। मंत्रिमंडल ही ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और इस रूप में उसके द्वारा व्यापक शक्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही समस्त प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। दूसरा, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। शासन की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रीगण विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, वे अपने विभागों का संचालन करते और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। राजनीतिक स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन भी मंत्रिमंडल ही करता है। सम्राट इन्हें केवल औपचारिक रूप से नियुक्त कर देता है। संसद में प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर मंत्रिमंडल को ही देना होता है। इसी प्रकार संसद में मंत्रिमंडल व प्रशासन में विविध विभागों के कार्यों को की जो आलोचना की जाती है उसे दृष्टि में रखते हुए मंत्रिमंडल को प्रशासन के दोष दूर करने का प्रयत्न करना होता है। तीसरा, मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न प्रशासनिक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन इन विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए एक प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, व्यवस्थापन संबंधी कार्य। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल न केवल प्रशासनिक कार्य करता है वरन विधि निर्माण के क्षेत्र में भी संसद का नेतृत्व और पथ प्रदर्शन करता है। संसदीय शासन के विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के एकीकरण के कारण मंत्रिमंडल का संसद से अविच्छिन्न संबंध रहता है। मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है वरन शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के आवश्यक कानूनों का निर्माण भी मंत्रिमंडल का ही कार्य है। सरकारी अधिकारी वैधानिक परामर्श के आधार पर विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं। मंत्रिमंडल उन्हें अंतिम स्वीकृति देता है तथा संसद में प्रस्तावित करता है और बहुमत के समर्थन से उन्हें पास करता है। अपने राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त करके लिए उत्तरदायी है। संसद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का कार्य सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करते हैं और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही लोकसभा को विघटित किया जाता है। तीसरा, वित्तीय कार्य। राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण और उसे संसद में स्वीकृत करना भी मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है। वास्तव में वित्त पर मंत्रिमंडल का पूर्ण अधिकार होता है। वार्षिक आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा वित्त मंत्री अपने देखरेख में तैयार करता है, किंतु बजट के मूल प्रस्ताव और आधार मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। मंत्रिमंडल को लोकसभा के बहुमत का जो समर्थन प्राप्त होता है उसके कारण किसी भी कर या अनुदान की मांग में कोई कटौती लोकसभा के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल को असाधारण शक्ति प्राप्त है और इस दृष्टि से विभिन्न ब्रिटिश मंत्रिमंडल अमरीकी राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमरीकी राष्ट्रपति वित्तीय क्षेत्र में कांग्रेस की दया पर निर्भर करता है। अन्य कार्य। उपर्युक्त के अतिरिक्त भी मंत्रिमंडल अनेक कार्य करता है। प्रथम, राजा द्वारा क्षमा के विशेषाधिकार का प्रयोग मंत्रिमंडल विशेषतया गृह मंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है। द्वितीय, राजा द्वारा अपराधियों का वितरण भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है। तृतीय, ब्रिटिश सम्राट द्वारा देश और विदेश में की जाने वाली समस्त नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर ही की जाती है। चतुर्थ, महत्वपूर्ण न्यायालयों के न्यायाधीश लॉर्ड चांसलर के परामर्श अनुसार ही समस्त सम्राट द्वारा नियुक्ति की जाती है। वास्तव में मंत्रिमंडल के अधिकार और कार्य बहुत व्यापक हैं। वह उन सभी कार्यों को करता है जो वैधानिक दृष्टि से सम्राट के अधिकार बताए जाते हैं। वर्तमान समय की प्रवृत्ति मंत्रिमंडल की ओर अधिक शक्तियां तथा कार्य प्रदान करने की है। मंत्रिमंडल वो सदन, लोक सदन का संबंध, मंत्रिमंडल और संसद का संबंध ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार के अंतर का एक उदाहरण है। सैद्धांतिक दृष्टि से स्थिति एक प्रकार की है और व्यवहारिक दृष्टि से दूसरे प्रकार की। इस कारण इन दोनों संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों के विषय पर विभिन्न लेखकों द्वारा अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। डाइसी ने सैद्धांतिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं संसद की प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया है, लेकिन रैमजे म्योर तथा लॉस्किन ने व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर कहा है कि संसद की नहीं वरन मंत्रिमंडल की सत्ता सर्वोच्च है। वैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार स्थिति। वैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार मंत्रिमंडल और संसद के पारस्परिक संबंधों में संसद की सत्ता सर्वोच्च है। व्यवस्थापन और प्रशासन दोनों ही क्षेत्रों में संसद की सर्वोच्चता स्पष्टतया देखी जा सकती है। व्यवस्थापन संबंधी सर्वोच्चता। वैधानिक दृष्टि से ही ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता प्राप्त है और कानून निर्माण के क्षेत्र में उसकी सत्ता की समानता करने वाली अन्य कोई भी संस्था नहीं है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, अतः ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है। संविधान लचीला होने के कारण ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत से ही संवैधानिक कानूनों के निर्माण कर सकती है। संसद की व्यवस्थापन संबंधी शक्ति इसलिए भी सर्वोच्च है कि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए संसद द्वारा निर्मित कानूनों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम के द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियां बहुत कम कर दी गई और आज संसद का अभिप्राय लोकसदन से ही हो गया है। यद्यपि व्यवहार में संसद के द्वारा कानूनों का निर्माण करते समय प्रथाओं, परंपराओं, धार्मिक और नैतिक मान्यताओं, जनमत और व्यवहारिक परिस्थितियों आदि सभी बातों को ध्यान में रखना होता है, तथापि वैधानिक स्थिति यही है कि संसद कानून निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च सत्तावान है। कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी सर्वोच्चता। ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश संसद को न केवल कानून निर्माण संबंधी सर्वोच्चता प्राप्त है, वरन वास्तविक कार्यपालिका पर भी लोकसदन के द्वारा नियंत्रित रखा जाता है। मंत्रिमंडल लोकसदन के प्रति उत्तरदायी होता है और लोकसदन अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है। लोकसदन निम्न साधनों के आधार पर मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखता है। प्रश्न। लोकसदन द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का प्रथम और सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय प्रश्न पूछना है। ये प्रश्न संसद के किसी भी सदस्य द्वारा मंत्री से उसके विभाग से संबंधित कार्यों के विषय में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछे जाने की आशंका मंत्रियों को सदैव भयग्रस्त रखती है, क्योंकि इन प्रश्नों से उनके दोष प्रकाश में आ जाते हैं और उनकी विभागीय नीति की आलोचना रहती होती है। यदि कोई मंत्री संसद सदस्यों के प्रश्न का उत्तर संतोषजनक ढंग से नहीं दे पाता तो इससे जनता, संसद और अपने राजनीतिक दल में उसका सम्मान कम हो जाता है और इस बात का उसके राजनीतिक भविष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। वाद विवाद। वाद विवाद भी संसद के हाथ में मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का एक उपाय है। यह विचार भी संसद के दोनों सदनों में मंत्रिमंडल की नीति और कार्यों पर किया जाता है। इसे प्रशासन के दोष प्रकाश में आते हैं और लोकमत सतर्क होता है। इस विवाद से मंत्रियों को अपनी नीति और कार्यों का औचित्य सिद्ध करना होता है और आलोचना का भय मंत्रियों को सदैव सचेत किए रहता है। निंदात्मक प्रस्ताव। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक अन्य उपाय निंदात्मक प्रस्ताव है। इससे मंत्रियों पर व्यक्तिगत प्रभाव प्रहार किया जाता है और इनका ध्येय किसी विशेष विषय की नीति के प्रति असंतोष व्यक्त करना होता है। इसे किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु निंदात्मक प्रस्ताव का पास होना कठिन होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य अपने सहयोगी मंत्रियों को बचाने की पूरी चेष्टा करते हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव। लोकसदन द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने तथा प्रस्ताव शासन की किसी विशेष समस्या या दोष के संबंध में रखा जाता है। यह प्रस्ताव लोकसदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि उसे 40 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो जाए तो सदन की उस दिन की बैठक का कार्य स्थगित कर प्रस्ताव के विषय पर ही वाद विवाद किया जाता है। कटौती प्रस्ताव। लोकसदन विशेष विभाग के कार्यों की नीतियों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए संबंधित मंत्री के वेतन पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य मंत्री विशेष के प्रति अविश्वास व्यक्त करना है। अविश्वास का प्रस्ताव। लोकसदन के पास मंत्रिमंडल में अविश्वास का व्यक्त करने के लिए अनेक साधन होते हैं। कानून निर्माण के क्षेत्र में मंत्रिमंडल की इच्छा के विरुद्ध कार्य करके भी मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त किया जा सकता है। किंतु अनेक बार किसी विधेयक पर मंत्रिमंडल को पराजित करके करने का उपाय प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि संभव है कि मंत्रिमंडल इस हार को महत्वपूर्ण न समझे। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल के कार्यों से असंतुष्ट होने पर लोकसदन को अविश्वास का प्रस्ताव पारित करना होता है। वित्तीय क्षेत्र में लोकसदन की सर्वोच्चता प्रतिनिधि के बिना कर नहीं। ब्रिटिश प्रजातंत्र का मूल आधार है और ब्रिटेन में यह सिद्धांत मान्य है कि जनता से कर वसूल करने या कर के रूप में प्राप्त धनराशि को व्यय करने का कार्य लोकसदन द्वारा ही किया जा सकता है। लोकसदन द्वारा बजट को स्वीकार किए बिना मंत्रिमंडल के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिमंडल पर लोकसदन की सर्वोच्चता के कारण ही अनेक विद्वान मंत्रिमंडल को संसद की एक समिति मानते हैं और कहते हैं कि मंत्रिमंडल का विकास संसद की संप्रभुता को वास्तविक बनाने वाली संस्था के रूप में ही हुआ है। व्यवहार में स्थिति सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिमंडल को भले ही संसद की एक समिति कहा जाता हो, व्यवहार में स्थिति नितांत विपरीत ही है। मंत्रिमंडल जो कि सिद्धांत में लोकसदन का दास है, व्यवहार में उसकी स्वामी हो गया है। व्यवस्थापन क्षेत्र कानून निर्माण के क्षेत्र में व्यवहारिक स्थिति यह है कि प्रमुख कानूनों के प्रारूप मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार किए जाते हैं और संसद इन विधेयकों को सामान्यतः उसी रूप में पारित कर देती है जिस रूप में मंत्रिमंडल ने इन्हें प्रस्तावित किया था। यदि उनमें कोई संशोधन किए जाते हैं तो केवल वे ही जो मंत्रिमंडल को मान्य होते हैं, इस प्रकार वे ही गैर सरकारी विधेयक संसद से स्वीकृत हो पाते हैं। कार्यपालिका क्षेत्र यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से लोकसदन के द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत किया जा सकता है, किंतु व्यवहार में जैसा कि सिडनी लोग लिखते हैं, लोकसदन के प्रांगण में आजकल कैबिनेट कभी पराजित नहीं होती ही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का तात्पर्य है लोकसदन के बहुमत दल द्वारा शासन की शक्ति विरोधी दल को सौंपना, और बहुमत दल कभी ऐसा नहीं करना चाहता। इसके अतिरिक्त यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा त्याग पत्र देने के बजाय सम्राट को परामर्श देकर लोकसदन को विघटित कराया जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र लोकसदन द्वारा बजट में कटौती करने की बात सैद्धांतिक ही है। जहां तक व्यवहार का संबंध है, लोकसदन यह कार्य कभी भी नहीं करता। आय व्यय और अन्य सभी वित्तीय प्रश्नों के संबंध में अंतिम निर्णायक शक्ति व्यवहार में मंत्रिमंडल को ही प्राप्त होती है। वस्तुतः वर्तमान समय में मंत्रिमंडल और लोकसदन के पारस्परिक संबंध सैद्धांतिक स्थिति के प्रतिकूल हो गए हैं। वस्तु स्थिति यह है कि लोकसदन मंत्रिमंडल को नियंत्रित नहीं करता, वरन स्वयं मंत्रिमंडल द्वारा नियंत्रित होता है। मंत्रिमंडल लोकसदन या अन्य किसी भी संस्था की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है। संसद पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण की वांछनीयता। लॉस्की ने रैमजे म्योर की धारणा को अस्वीकार करते हुए विचार व्यक्त किया है कि शासन में मंत्रिमंडल की प्रमुखता वांछनीय संसदीय शासन प्रणाली के सफल संचालन के लिए आवश्यक भी है। उनका विचार है कि जब एक राजनीतिक दल निश्चित कार्यक्रम के आधार पर लोकसदन में बहुमत में प्राप्त कर लेता है, तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने इस कार्यक्रम को पूरा करे। कार्यक्रम की क्रियान्वित मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जा सकती है, लोकसदन के द्वारा नहीं, और मंत्रिमंडल भी यह कार्य तभी कर सकता है जबकि उसे लोकसदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में यदि मंत्रिमंडल एवं निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी शक्ति के साथ कार्य करता है तो इसमें बुराई क्या है? वस्तु स्थिति तो यह है कि यदि मंत्रिमंडल ऐसा ना करे तो जनसाधारण का लोकतंत्र में विश्वास ही डगमगाने लगेगा। अतः शासन में मंत्रिमंडल की यह प्रमुखता लोकतंत्र की प्रवृत्ति के नितांत अनुकूल है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान। इस प्रकार प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का केंद्र है और उसकी स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शासन में प्रधानमंत्री की स्थिति इतनी अधिक महत्वपूर्ण और केंद्रीय है कि वर्तमान समय में कुछ पक्षों द्वारा ब्रिटिश सरकार को मंत्रिमंडल सरकार के स्थान पर प्रधानमंत्री सरकार कहा जाने लगा है। RHS क्रॉसमैन ने भी यही विचार व्यक्त किया है कि युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय शासन प्रधानमंत्री के शासन में परिणत हो रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सैद्धांतिक रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, किंतु व्यवहार में लोकसदन के बहुमत दल के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। यद्यपि अब तक ऐसे कुछ अवसर हुए हैं जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट के द्वारा अन्य अपने विवेक का प्रयोग किया गया, लेकिन अब दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा दलीय नेता के स्वरूप चुनाव की परंपरा को अपना लिए जाने से प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किए जाने के अवसर लगभग समाप्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए संसद सदस्य होना अनिवार्य है। इस संबंध में यह भी परंपरा स्थापित हो गया है कि प्रधानमंत्री लोक सदन में से ही होनी चाहिए, लोकसभा में से नहीं। प्रधानमंत्री पद की अनौपचारिकता। प्रधानमंत्री पद की एक विशेषता यह है कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है और यह अनौपचारिक ही है। प्रधानमंत्री पद की स्थापना किसी संसदीय कानून के आधार पर नहीं हुई, वरन यह स्वतः विकसित हुआ है। जब सम्राट जॉर्ज प्रथम ने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया तो कैबिनेट की अध्यक्षता के लिए पदाधिकारी ही आवश्यकता अनुभव की गई। यह पदाधिकारी कैबिनेट का प्रधान ही हो सकता था और इसी से प्रधानमंत्री पद का उदय। इस प्रकार 1721 में नियुक्ति सर रॉबर्ट वॉलपोल ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री था। इस पद का सर्वप्रथम उल्लेख 1878 में हुआ, जबकि लॉर्ड बिंग्सफील्ड ने बर्लिन संधि पर हस्ताक्षर करते हुए अपने आप को राजकीय कोष का प्रथम लॉर्ड इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लिखा, जिससे विदेशी लोग हस्ताक्षरकर्ता की स्थिति को समझ सके। बाद में 1906 में उसका स्थान निर्धारित करते हुए उसे यॉर्क के आर्क बिशप के बाद राज्य का चौथा नागरिक माना गया है। इसके बाद 1937 ईस्वी के राजमुकुट के मंत्रियों से संबंधित कानून सबसे पहले प्रधानमंत्री वो राजकीय कोष के प्रथम लॉर्ड के पद का अस्तित्व स्वीकार किया गया, लेकिन इस कानून में भी प्रधानमंत्री के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों का कोई कानूनी आधार नहीं है। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जेनिंग्स ने इसी कारण प्रधानमंत्री को संपूर्ण संविधान की आधारशिला बताया है। सर सिडनी लो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संबंध में लिखते हैं कि संसद में निश्चित बहुमत के रहते हुए इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वह सब कार्य कर सकता है जिसको जर्मन का सम्राट और अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह कानून में परिवर्तन कर सकता है, करारोपण कर सकता है और उसे समाप्त कर सकता है। वह राज्य की सभी शक्तियों का पूर्ण निर्देशन कर सकता है। प्रशासन में प्रधानमंत्री को जो व्यापक शक्तियां प्राप्त है उनकी विवेचना निम्न रूपों में की जा सकती है। मंत्रिमंडल का निर्माण। वैधानिक शब्दावली के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट द्वारा की जाती है, किंतु जहां तक वास्तविकता का संबंध है मंत्रियों की नियुक्ति में सम्राट का कोई हाथ नहीं होता। अब प्रधानमंत्री जिन किन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करने की सिफारिश करता है सम्राट उसे स्वीकार कर लेता है। यद्यपि प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व, सदस्यों की दक्षता और उनकी समाज सेवा की भावना आदि का ध्यान रखना होता है, लेकिन अंतिम रूप से इस संबंध में प्रधानमंत्री की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। व्यवहारिक अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि इस संबंध में न तो संसद और न ही दलीय कार्यपालिका ने उसके ऊपर कोई दबाव डाला। यद्यपि सामान्यतया ब्रिटेन में एक दलीय मंत्रिमंडल की परंपरा है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने दल से बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल में ले सकता है। वह संसद से बाहर के व्यक्ति को ही मंत्रिमंडल में ले सकता है यदि किसी विशेष कार्य को करने के लिए उसकी दृष्टि में वही सर्वाधिक उपयुक्त हो। न केवल सहयोगियों के चुनाव वरन उनके बीच विभागों के वितरण में भी प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री जो निर्णय करता है सामान्यतया उसे अस्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि पद अस्वीकृत का तात्पर्य न केवल संसद के उस कार्यकाल के लिए पदहीनता वरन सदैव के लिए ही मंत्री पद से वंचित रहना और कभी कभी तो राजनीतिक जीवन की समाप्ति होता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण कर उनकी वरन उसकी समस्त कार्यवाही का संचालन भी करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है और मंत्रिमंडल की कार्यविधि पर उसका नियंत्रण होता है। व्यवहारतः प्रत्येक मंत्री किसी मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री की राय अवश्य ही लेता है और यह बात उसे मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शक बना देती है। मंत्रिमंडल के निर्माण तथा नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री का सर्वोपरि हाथ रहता है। यद्यपि मंत्रिमंडल के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर गोपनीय किंतु स्वतंत्र विचार विमर्श की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और विवादास्पद विषय पर मतदान की प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है, किंतु सामान्यतया प्रधानमंत्री का विचार ही निर्णायक होता है और मंत्रिमंडल उसे अपने निर्णय के रूप में स्वीकार कर लेता है। मंत्रिमंडल का अंत। विधि के अनुसार मंत्रियों को पदच्युत करने का अधिकार सम्राट को विशेषाधिकार है, लेकिन व्यवहारतः यह परंपरा स्थापित हो गई है कि इस अधिकार का प्रयोग वह प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक सहयोगियों की पदच्युति या संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंत की सिफारिश सम्राट से कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे दे तो उसके त्यागपत्र के साथ स्वतः ही पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। प्रधानमंत्री से अंतिम रूप से असहमत मंत्री को त्यागपत्र देना ही होता है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत ही मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की शक्ति भी सम्मिलित है। लॉस्की के शब्दों में, वह अपने मंत्रिमंडल में जब चाहे तब और जैसे चाहे वैसे परिवर्तन कर सकता है। मंत्री प्रधानमंत्री की यह शक्ति मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री को नियंत्रित बनाए रखने में सहायक होती है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री को प्राप्त इस स्थिति के आधार पर लॉस्की लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है। वह उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। शासन पर नियंत्रण। सिद्धांत रूप में देश का शासन प्रमुख राजा है, किंतु व्यवहार में शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। शासन पर सर्वोच्च नियंत्रण रखने हेतु उसके द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है। उसके द्वारा यह कार्य विभिन्न विभागों के मंत्रियों में मध्यस्थता करते हुए और विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश देते हुए किया जाता है। राजकीय सम्मान प्रदान करने का कार्य कार्य सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर नियुक्तियाँ या तो प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं की जाती है या उनके परामर्श के आधार पर सम्राट द्वारा की जाती है। बिशप, राजदूत, न्यायाधीश, विभागीय प्रमुखगण, उपनिवेशों के गवर्नर, अस्थायी आयोगों और बोर्डों के प्रमुख अधिकारी प्रधानमंत्री के ही कृपा पात्र होते हैं। यद्यपि नियुक्तियों के संबंध में विभागीय मंत्रियों की राय ली जाती है, फिर भी प्रधानमंत्री का ही निर्णय अंतिम होता है। अंत में कोष का प्रथम लॉर्ड और कोष के संस्थान मंडल का अध्यक्ष होने के कारण कोष के उच्च अधिकारियों के चयन में प्रधानमंत्री की सहमति आवश्यक होती है। लोक सदन का नेतृत्व। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है और उसके द्वारा शासन प्रमुख के साथ साथ लोक सदन के नेता के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करता है। वह व्यवस्थापन के संबंध में नीति निर्धारण कर संसद का पथ प्रदर्शन करता है। समस्त सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसके परामर्श के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं और वार्षिक आय व्यय तैयार करने में भी प्रधानमंत्री का प्रमुख हाथ रहता है। सदन के अध्यक्ष तथा विरोधी दल के नेता के परामर्श से वह संसद का समय विभाजन तथा कार्यक्रम तैयार करता है और दलीय सचेतकों के माध्यम से वह दल के सदस्यों को आवश्यक आदेश देता है। संसद में शासन की नीति से संबंधित अंतिम तथा अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। लोक सदन के नेता के रूप में उसकी एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति लोक सदन को विघटित करने की है। प्रधानमंत्री सम्राट को लोक सदन विघटित करने की सिफारिश करता है और सम्राट साधारणतः उसे स्वीकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के हाथ में यह बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र होता है जिसके आधार पर वह लोक सदन के सदस्यों को अनुशासित और नियंत्रित रखता है। मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री सम्राट का मुख्य परामर्शदाता तथा मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच संपर्क स्थापित करता होता है। मंत्रिमंडल के निश्चयों और शासन संबंधी अन्य निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री सम्राट को देता है और इनके संबंध में सम्राट द्वारा किए गए परामर्श को वह मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। 19वीं सदी तक प्रधानमंत्री की उपेक्षा करके अन्य मंत्री सम्राट से सीधा संपर्क स्थापित कर लेते थे, लेकिन आजकल यह परंपरा स्थापित हो गई है कि अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सहमति से ही सम्राट से भेंट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व। राजनीतिक, आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। चैम्बरलेन ने हिटलर के वार्तालाप कर म्यूनिख समझौता पर हिटलर के हस्ताक्षर कराए थे, यद्यपि उस समय विदेश मंत्री पद पर लॉर्ड हेलिफैक्स थे। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल के 6 बार अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा 2 बार सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता स्टालिन से मिलने के परिणाम स्वरूप हे मित्र राष्ट्रों की युद्ध नीति निश्चित हो सकी थी। राष्ट्रीय मंडलीय देशों के साथ संबंध। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह भी कार्य है कि वह राष्ट्रमंडलीय देशों से संपर्क स्थापित रखे और महत्वपूर्ण विषयों में उनको परामर्श देता रहे। 1973 के आरंभ में ब्रिटेन द्वारा यूरोपियन आर्थिक समुदाय ईसीएम की जो सदस्यता प्राप्त की गई उसके लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरल्ड विल्सन और एडवर्ड हीथ के द्वारा अनेक बार राष्ट्रमंडलीय देशों से संपर्क स्थापित किया गया, जिससे विचार विमर्श के लिए प्रधानमंत्री समय समय पर उनकी अनेक सम्मेलन बुलाते रहे हैं। इन सम्मेलनों की अध्यक्षता भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ही करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक होता है। इन सब के अतिरिक्त एक तथ्य जो प्रधानमंत्री को ब्रिटिश राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना देता है वह यह है कि वर्तमान समय में सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है, राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी नीतियों के आधार पर नहीं वरन अपने नेता के व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। 1945 का आम चुनाव अनुदार दल के द्वारा चर्चिल के नाम पर ही लड़ा गया था और अनुदार दल का प्रमुख नारा था, उसको युद्ध का अधूरा काम पूरा करने दो। यह बात 20वीं सदी के सभी ब्रिटिश चुनावों के संबंध में कही जा सकती है। जेनिंग्स के शब्दों में सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन है। ढुलमुल मतदाता जो चुनाव परिणाम निश्चित करते हैं वे न तो किसी दल का समर्थन करते हैं और न किसी नीति का, वरन वे एक नेता का समर्थन करते हैं। लॉस्की ने इस चुनाव परिणामों के संबंध में लिखा है कि इस प्रकार की चुनावबाजी से प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है और इसलिए जब तक प्रधानमंत्री रहता है उसका कोई सहयोगी उसका मुकाबला करने को साहस नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति। प्रधानमंत्री पद के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल में या अपने सहयोगियों के बीच में प्रधानमंत्री को क्या स्थिति प्राप्त होती है। इस संबंध में परंपरागत रूप से प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रधान कहा जाता रहा है। लॉर्ड माले ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम ही कहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मार्ले के वाक्यांश समकक्षों में प्रथम को वर्तमान समय में उपयुक्त नहीं समझा जाता है। वर्तमान दृष्टिकोण यह है कि प्रधानमंत्री को ही मंत्रिमंडल में जो महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होता है उसे देखते हुए प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम नहीं वरन मंत्रिमंडल का अधिपति ही कहा जाना चाहिए। वर्तमान समय में ब्रिटिश मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग राजनीतिक दलों की नीतियों के आधार पर ही नहीं वरन उसके नेता के व्यक्तित्व के आधार पर करते हैं। इस प्रकार सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन हो गया है और इससे प्रधानमंत्री को अपने साथियों पर छा जाने का अवसर मिलता है। क्या प्रधानमंत्री अधिनायक है? प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में उसके अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या प्रधानमंत्री अधिनायक है। रेमजे म्योर के द्वारा प्रधानमंत्री के पद के संबंध में कुछ ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के अधिनायक के रूप में कल्पना करना वस्तुतः निराधार है। प्रधानमंत्री के सहयोगियों में से कुछ को निश्चित रूप में से ब्रिटिश राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है और यद्यपि ये अधिकांश बातों के संबंध में मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की बात स्वीकार कर लेता है, लेकिन कुछ बातों के संबंध में प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की बात स्वीकार करनी पड़ सकती है। यह बात आंतरिक प्रशासन और परराष्ट्र संबंधों के संचालन दोनों के संबंध में सत्य है। उदाहरण के लिए 1967 में प्रधानमंत्री विल्सन और उनके सहयोगियों ब्राउन मिस्र और द्वारा तिरान की खाड़ी बंद किए जाने के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की विचारधारा इसके पक्ष में नहीं थी और विल्सन ऐसा नहीं कर सके। प्रधानमंत्री चुनाव के आधार पर एक निश्चित समय के लिए ही सत्ता प्राप्त करता है और यदि वह अपने कार्यकाल में अनुचित कार्य करता है तो निर्वाचक अगले चुनाव में उसे सत्ताहीन कर सकते हैं। उसके कार्य अधिक अनुचित होने पर उसे चुनाव के पूर्व भी लोक सदन या उसके दल द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का अधिनायक इसलिए भी है नहीं कहा जा सकता है कि संसद के अंदर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में उसकी आलोचना होती रही है। एक अधिनायक के समान वह आलोचकों को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करता, वरन एक प्रजातांत्रिक नेता के समान सहनशीलता का परिचय देते हुए आलोचकों की शंकाओं का समाधान करने की चेष्टा करता है। प्रधानमंत्री अधिनायक इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है कि उसकी शक्तियां मौलिक नहीं होती, वे लोकसभा में उसके दल के बहुमत और दल में उसके नेतृत्व पर निर्भर करती है और दोनों में से एक भी स्थिति के समाप्त हो जाने पर वह कुछ भी नहीं करता। इन्हीं बातों के आधार पर कार्टर और अन्य लेखकों का मत है कि प्रधानमंत्री अधिनायक नहीं हो सकता। कार्टर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ अवसरों पर अपनी शक्तियों का भले ही मनमाने रूप से प्रयोग करे, आलोचना करे, क्रुद्ध होने का भाव ही प्रकट करे, किंतु मूलभूत रूप में वह मान्यता सदैव विद्यमान रहती है कि वह जनता का सेवक है और जनता को उसकी आलोचना करने तथा उसे पदच्युत करने का अधिकार है। उसकी यह स्थिति किसी रूप में अधिनायक के रूप में नहीं कही जा सकती है। प्रधानमंत्री की स्थिति और उसके निर्धारक तत्व। यह तो नितांत स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कुछ ही अवसरों पर भले ही वह बहुत अधिक शक्तिशाली रूप में कार्य कर रहे, किंतु वह किसी भी रूप में अधिनायक नहीं है। व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री पद कभी तो बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन कभी निर्बल ही दिखाई देता है। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। किन तत्वों की विवेचना निम्न रूपों से की जा सकती है? प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। प्रधानमंत्री पद की स्थिति सबसे प्रमुख रूप में इस पद को धारण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। लॉर्ड एस्विक्ट के मतानुसार प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा कि इस पद का अधिकारी उसे बनाना चाहता है। एक और सर रॉबर्ट पोल, ग्लैडस्टीन, डिज़रौली, लॉयड जॉर्ज और विंस्टन चर्चिल जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री हो चुके हैं, जिनके समय में प्रधानमंत्री पद से नवीन ऊंचाइयों को स्पर्श किया। दूसरे वर्ल्डिन एवं एटली जैसे प्रधानमंत्री हो चुके हैं जो सहयोगियों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में असफल रहे हैं। लोक सदन में उसके दल और दल की में उसकी स्थिति। प्रधानमंत्री का पद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही जैसा कि लॉस्की ने कहा है, उसकी स्थिति दलीय प्रणाली से बंधी हुई है। जब तक उसके राजनीतिक दल का लोक सदन में बहुमत रहता है और वह अपने राजनीतिक दल का नेता है, तभी तक उसे राष्ट्रीय महत्व की स्थिति प्राप्त रहती है। दल के समर्थन से वांछित हो जाने पर उसका समस्त महत्व समाप्त हो जाता है और उसका हाल रेंजे मैकडोनाल्ड जैसा हो जाता है। तत्कालीन परिस्थितियां। प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके कार्यकाल के समय परिस्थितियां किस प्रकार की है। सामान्य परिस्थितियां होने पर प्रधानमंत्री को अपने पद की सीमाएं दृष्टि में रखनी होती है, किंतु युद्ध, आर्थिक संकट या अन्य प्रकार के विषम काल में वह बहुत अधिक सीमा तक केवल अपने ही विवेक के आधार पर कार्य कर सकता है। लॉयड जॉर्ज और चर्चिल के अधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का एक कारण उनके कार्यकाल के समय विद्यमान युद्धकालीन स्थिति रहा है। जेनिंग्स के शब्दों में, प्रधानमंत्री की शक्ति तथा उसका महत्व कुछ उसके व्यक्तित्व पर, कुछ उसकी व्यक्तित्व प्रतिष्ठा पर तथा उसके कुछ दल के समर्थन पर निर्भर करता है।